गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकरतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदंडाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे संकर्षण कारण तो साई गर्भोदसाई च पयोदिशाई शेषस्य जस्यांश कलाश नित्यानंदाक्षराम शरणम नमः। आज श्री रोहिणी नंदन बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव है। कुछ लोग गर्ग संहिता के अनुसार में जन्माष्टमी के बाद में मानते हैं, किंतु ऐसा मानने से कुछ असुविधा होगी। तब कृष्ण और बलदेव, कृष्ण से बलदेव जी करीब एक वर्ष बड़े हो जाएंगे, उस स्थिति में दोनों का खेलना जुलना एक साथ में एक ही साथ में नामकरण इत्यादि ये सब संभव नहीं हो सकता। इसलिए जीव गोस्वामी ने कहा कि नहीं, झूलन के बाद में जो पूर्णिमा आती है, आज के पूर्णिमा के दिन ही में बलदेव प्रभु जी का आविर्भाव है और इसके आठ दिन के बाद आठवें दिन, सात दिन के बाद आठवें दिन भाद्र अष्टमी को कृष्ण का आविर्भाव होता है। इस विषय में श्री श्री रसानंद ब्रह्मचारी जी श्रील बलदेव प्रभु जी के महत्व को बतला करके और उनके चरणों में पुष्पांजलि देंगे। तुम्हें यहाँ आदमी काफी है।
ओम अज्ञान दिव्यांगस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संकर्षण कारण प्रसाई गर्भोदसाई च पयोदिशाई शेषांश जस्यांश सकला च नित्यानंदाक्षरामं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम श्री गुरुदेव नित्रिला प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरुदेव परिप्राज आचार्य जगदेव स्वामी हम लोगों का परम सौभाग्य का दिन है। आप लोगों ने तीन तीन दिन तक हमारी गौड़ीय संप्रदाय की रसाचार्य गौड़ीय संप्रदाय जिसके लिए दूसरे दूसरे संप्रदाय से भी गौड़ीय वैष्णव का जो विशेष महत्व जिनको लेकर के श्री रूप गोस्वामी पाद हम लोग तीन तीन तक दिन तक उनको विषय पर बड़े गंभीर रूप में विवेचना हम लोगों ने श्रवण किया है। इसलिए कि जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि किसके कारण है। जैसे पुराण में बताया श्रुति स्मृतरे स्मृति मितरे भारत मन्य भवित
भजंत
भवति भजंत भविता आम ही नन्दम दर्पे जैसा लिंग परम ब्रह्म। कोई भले इस स्मृति को कोई वंदना करे, कोई इस स्मृति को वंदना करे, लेकिन मैं किसको वंदना करता हूँ? कहते नंदबाबा। बोले क्यों? जिनका अंगना पर स्वयं परा पर परम ब्रह्म कृष्णा गुठन पर चक्की मारते खेलते हैं, उसी तरह भले ही कोई दूसरे दूसरे के वंदना करे, लेकिन हम किसको वंदना करते हैं? हम वंदना हर श्री गुरु महाराज जी को हम वंदना करते हैं, क्योंकि इनका ही कृतित्व है। मुझे लगता है हम लोग जो तीन तक केवल एक विषय पर, कोई अलग विषय नहीं, केवल एक विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से हम लोग जो रूपानुगत्व और ऐसी रूपानुगत के वजह से हमारा संप्रदाय का इतना महत्व है। इन विषय पर अगर कोई तीन तीन दिन तक श्रवण करे तब क्या होगा? जरूर उसका हृदय में कुछ ना कुछ लोभ ये जरूर प्रकट होगा, और हमारे शास्त्र में इसी लोभ को ही मूल रूप में बताया गया है। लोभ ही वो प्रादानुगा भक्ति को प्राप्त करने का केवल एक, इसलिए तत्रा लवल्य में कलम कोटि सुकृत बिना लभ्यते, करोड़ करोड़ सुकृत के द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये लोभ हमारी भक्ति ऐसे है जो आसानी से ही वो दुर्लभ वस्तु को हमें प्रदान करता है। इसलिए इसका जो मूल रूप में इसमें हमारे महाराज जी का ही ये विशेष है। मुझे लगता है पृथ्वी में कहीं भी आप विश्व ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, ये रूपानुभव को विषय पर हम लोग जितना श्रवण किया, शायद किसी ने इतना श्रवण नहीं किया। ये कृतित्व हमारे श्री महाराज का ही है। आज इसी कड़ी में ही आज श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण सर्व अवतारी वो स्वयं भगवान। बलदेव प्रभु को नहीं उसका तो दूसरे विग्रह, कृष्ण ही स्वयं बलदेव रूप में एक ही स्वरूप से मात्र है, तत्व तो वो एक है, लेकिन केवल कृष्ण देखने में काले और श्री बलदेव प्रभु देखने में केवल गोरे हैं, कितना मात्र ही भेद है। इसलिए हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर जब वे चैतन्य भागवत वर्णना करते हैं वो मंगलाचरण श्लोक में कहते हैं, उसमें क्या बताए? फिर आजानुलंबित भुजो कनका बदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायतक्षो विश्वं भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तब वे श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु को वंदना करते हुए नियम है अपना गुरु जी को वंदना करें, इसलिए श्री बलदेव प्रभु श्री प्रभु को कैसे महाप्रभु से अभिन्न है। इसलिए यह श्लोक में द्विवचन द्विवचन प्रयोग उन्होंने किया है, उसमें कृष्ण से महाप्रभु से अभिन्न प्रभु श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु को दिखा रहे हैं। दो वचन रूप से दिखा रहे हैं महाप्रभु में जो जो चीज है वो सब के सब नित्यानंद बलदेव प्रभु में ठीक वही गुण है। इसलिए प्रभुपाद किसी श्लोक को में विस्तृत व्याख्या प्रभुपाद करते हैं। इसलिए केवल क्योंकि कृष्ण से अभिन्न श्री बलदेव प्रभु, श्री बलदेव प्रभु किसी ने और रास नहीं रचाया, केवल कृष्ण को छोड़ करके, और किसी को नहीं माना जाता है किसी का बता दे, लेकिन श्री बलदेव प्रभु दास चाहे। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत का पहले ही स्थापन करना चाहते है। उन्होंने मधु और बस मधु और माधव दो महीना में श्री बलदेव प्रभु राम घाट पे प्रभु निवास रचाया। ये भी कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है और किसी अवतार ने ये रास नहीं की है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु जैसे जो मूल जो बलदेव कहते जब वे वृंदावन में रहते हैं कृष्ण जैसे वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, कृष्ण जैसे वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि उसी तरह सा श्री बलदेव बलराम प्रभु बलदेव प्रभु वो भी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। अपूर्ण धार से ही कृष्ण जैसे लौट गए जो मूल जो ब्रजेंद्र नंदन, उसी तरह जो जो रोहिणी नंदन वो भी ब्रज में वापस आ जाते हैं। अब जो देवकी नंदन थे यही से ही अपूर्ण धार से देवकी नंदन मथुरा में जाते हैं, लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन और श्री रोहिणी नंदन यहीं से वो वापस चले जाते हैं। और श्री ये जब ये ब्रज में रहते हैं कहते इनका आश्रय है कहते बेणु इनका हाँ बेणु सिंगा है, लेकिन जब वो मथुरा का द्वारका में जाते हैं उसी समय इनका जो आश्रय है कहते हाल और मुसल है। इसलिए कहते हाल मुसल को द्वारा क्या करते हैं कहते हाल उनको द्वारा खेती किया जाता है। अब मुसल से जो बड़े बड़े जो मिट्टी होता है इसको मार मार करके उसके तब मुलायम बना दिया जाता है, जैसे उसमें अंकुर हो बीज का अंकुर हो। फिर उसी तरह श्री बलदेव प्रभु की जीव का हृदय में खेती करते हैं। फिर यहाँ पर हमारा हृदय बलदेव प्रभु क्या खेती कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए गोपाल बंधुओं को दो स्वरूप माना गया है।
वो जीव की खेती करते हैं, जीव के हृदय में नहीं जीव की खेती करते हैं,
जीव की खेती और जीव के हृदय में जो खेती करते हैं। जैसे गोपाल बंधु रूप में हाँ गोपाल बंधुओं को बलदेव नित्यानंद प्रभु का अभिन्न स्वरूप माना जाता है। इसलिए गोपाल बंधु रूप में बलदेव प्रभु हरि कथा के माध्यम से जैसे श्री रूप गोस्वामी को श्रीमद चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, और वो भक्ति लता बीज को ही श्री नित्यानंद प्रभु अभिन्न गुरुपाद स्वरूप में हरि कथा सुना करके वे हमारा हृदय को मुलायम बना देते हैं, एकदम कोमल बना देते हैं, जिस हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बीज जैसे अंकुरित हो। और गुरुपाद सत्म रूप में ही बलदेव प्रभु आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया अनर्थ निर्भित रूप गोस्वामी जो उसका क्रम बताए ये चीज को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये ब्रह्मांड को भेद करते वैकुंठ वैकुंठ को भेद करते फिर द्वारका मथुरा और लास्ट गोलोक वृंदावन तक कौन पहुंचाते हैं, और जो प्रेम रस जीव आस्वादन करता है कि काम को कौन करते हैं कहते गुरुपाद बंध रूप में ये बलदेव प्रभु ही करवाते हैं। इसलिए और जो खेती कहते ये जीव का भी खेती करते हैं कहते कैसे कहते जो वृंदावन में जब रहते हैं कहते कृष्ण का जितने परिकर है ये कहते श्री बलदेव प्रभु का ही ये प्रकाश है। और जो वृंदावन वृंदावन में रहते हैं और उनको पता ही नहीं कि माया जगत क्या होता है और नित्य कृष्ण सेवा में डूबे हुए होते हैं जो बलदेव प्रभु से जो जीव प्रकट होते हैं। और श्री द्वारका में संकर्षण से जो प्रकट होते हैं मूल संकर्षण से यदि वो भी कृष्ण सेवा में तत्परिकर रूप में वहां कृष्ण सेवा करते हैं। और वैकुंठ में जो जो महासंकर्षण से जो जीव प्रकट होते हैं कभी ये वैकुंठ में ये भी प्रभु नारायण की सेवा में वहां भी डूबे रहते हैं। लेकिन और एक रूप में जो गर्भोदशाई विष्णु कानोदशाई विष्णु कहते वहां से जो जीव प्रकट होते हैं वहां जो बलदेव प्रभु कैसी करते हैं फिर वहां से दो तरह का जीव प्रकट होते हैं कहते एक बद्ध है और एक मुक्त है। कुछ जीव तो माया के तरफ में देख करके माया की चाक्षुष देख करके जैसे हम लोग हैं हम तो ये माया जगत में आ गए और कुछ जीव प्रभु को सेवा में चले गए। इसलिए वो विभिन्न जगह में जीवों का खेती करते हैं, इसलिए उनके हाथ में ये हाल और ये मुसल है। और मुसल के द्वारा जैसे एकदम बड़े बड़े मिट्टी को उसको मार मार के मुलायम बना देते हैं, उसी तरह गुरुपाद पद्म भी अपना पाणी रूपी तलवार द्वारा इसे संत एवास छिंदंती मन व्यास संग उसी भी कहते गुरुदेव अपना पाणी रूपी तलवार द्वारा हमारे अनर्थ को काट देते हैं। इसलिए श्री गौर किशोर दास महाराज बोलते हैं कि शुद्ध वैष्णवता की कथा कभी हमारे मन के अनुकूल कभी नहीं होगा। उनका कथा नहीं एक तलवार है, हम हर समय ये विषय प्रति हम दौड़ते हैं, हम विषय भोग करने के लिए, लेकिन गुरुपाद पद्म क्या करते हैं वाणी की तलवार द्वारा उसको काट करके हमारे आसक्ति को संसार से हटा करके भगवान का चरण लगा देते। इसलिए गुरुदेव करके बोलते थे तो अगर मैं सच बात बताऊ ना फिर मेरे पास तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब चाहते विषय को हम संसार में मस्त रहे आनंद ले। इसलिए कभी गुरुपाद पद्म भी एकदम हम बच्चे हैं भक्ति जगत में, इसलिए थोड़ी थोड़ी करके भी गुरुपाद पद्म हमारे मीठी मीठी बोली बोल करके जैसे ये धीरे 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 भजन में लगे, क्योंकि एकदम कठोर वाक्य बोलेंगे तो वास्तव में भागवत की कथा सुनना बहुत कठिन है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे भागवत कथा नहीं, ये तो जय मंगल चाबुक है, इसे चाबुक प्रहार करते हैं। भागवत कथा गुरुपाद पद्म भी ये बाणी की तलवार के द्वारा ये हमको मार भाग करके हमारा सारे अनर्थ को हटा देते हैं। इसलिए इनका नाम बलदेव है। तो बलदेव नाम क्यों कहते, बल मतलब होता है बल, देव मतलब होता है बल की जो अधिष्ठात्री देव है, कौन सा बल की आध्यात्मिक बल की। इसलिए श्री बलदेव प्रभु संधि शक्ति के मूल अधिष्ठात्री देवता है, जैसे सत्ता नहीं हो तो कोई खड़े नहीं हो सकते, आधार नहीं हो तो कोई खड़े नहीं हो सकते, उसी तरह बलदेव प्रभु के कृपा के बगैर हम भक्ति जगत में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमारा हृदय में जो शक्ति देने वाले जैसे उत्साह निश्चा धर्जा तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतवृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्ध गति, जब तक श्री गुरुपाद पद्म रूप में हमारा हृदय में वो उत्साह प्रदान नहीं करे, बलदेव प्रभु रूप में हृदय में जब जी को उत्साह नहीं दे, हाँ निश्चय सब देने वाले कौन है, श्री बलदेव प्रभु ही हमारा हृदय में गुरुपाद पद्म रूप में कथा सुनाकर हृदय में उत्साह देने वाले श्री बलदेव प्रभु है। इसलिए कहते नाया महात्मा बलहीन न लगता, जब तक हमारे अंदर में भक्ति के बल नहीं हो तब तक हम भगवत भक्ति जगत में हम चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए जितने भी सारे काम को ये बलदेव प्रभु करते हैं, जब ये राखी बांधती राखी क्या है, हम सबके सब राखी बांध रहे हैं, राखी क्या है, राखी मतलब होता है रक्षा करना, इसलिए ये राखी जो हाथ में बांधती है कौन है, कहती इसी बलदेव प्रभु है, हमको कौन रक्षा करता है, किसी बलदेव प्रभु ही गुरुपाद पद्म रूप में बलदेव प्रभु हमको ये भगवत भक्ति जगत में भगवत कथा सुना करके रक्षा करते हैं। इसलिए रक्षा से इसका नाम राखी है, इसलिए इनका एक स्वरूप श्री अनंत देव है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु वे बहु रूप में भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु सर्वप्रथम वे जो बध करते हैं वो धिन्न स्वरूप बध किया सर्वप्रथम, और उन्होंने जो प्रकट हुए तक ये सप्तम गर्भों में प्रकट होते हैं, अष्टम गर्भों में कृष्ण आते हैं। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां बताते हैं कृष्ण की बलदेव प्रभु सप्तम गर्भ में क्यों आए, फिर उसको पहले षड गर्भा मरिया के पुत्र, इसलिए पहले षड गर्भा को पहले कंस और छह पुत्र को उन्होंने वध किया है। कहते छह पुत्र क्या है, कहते जो कहते ये सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु कहते कंस भया कंस कहते कंस है भया भय का स्वरूप है, कहते जो षड गर्भ किया कहते षड गर्भ ये जो छह तरह का काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हो, नहीं जो छह तरह का रूप रस गंध शब्द स्पर्श हो, कहते गुरुपाद पद्म रूप में ही ये पहले इसको चीज को मारते हैं, भय से हम लोग ये छह जो तरह जो छह तरह का शत्रु है जब नष्ट हो जाता है फिर कृष्ण जब आएंगे तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बनता है, फिर उसको बाद में श्री बलदेव प्रभु आते हैं, उसको बाद में श्री कृष्ण जब शुद्ध सत्व हृदय हो जाए उसको बाद में फिर आते हैं कृष्ण। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये जो सप्तम स्टेज में भाव दिखाया, जैसे भाव स्थिति में जैसे शांति अव्यक्त तालतम, रुको स्वामी इसको बोले शांति अव्यक्त तालतम व्यक्ति मान शून्यता आशा बद्ध समुत्कंठा नाम दान सदा रुचि। श्री विश्वनाथ ठाकुर कृष्ण आने का जो पहला लक्षण बताया, कभी कभी भगवान का चरण की नुपुर की आवाज सुनने को मिलता है, कभी कभी भगवान की वस्त्र की अलंकार की छटा, कभी कभी लगता है जिसको अधमृत पिला करके गए, कभी कभी लगता है किसी ने हमको स्पर्श किया है, क्योंकि सबके सब भाव स्थिति में। उसको बाद में अष्टम जो स्टेज है साक्षात कृष्ण का प्राप्ति है, इसलिए बलदेव को सर्वप्रथम में गर्भा गुरु बल दिया है, इसलिए भागवत में बताया सुबी बहा उष्ट्र करे संस्तुत पुरुष पशु न जात कर्ण पथ वेद जात नाम बदा गए। जिनको कान में भगवत कथा प्रवेश नहीं करते वही कथा है, इसलिए हम बोलते तो क्या गधा है कि काली ना है, इसलिए हमारा अंदर में गधा पड़े हैं, इसलिए कि गधा के अंदर में बहुत बुरे बुरे इसका अंदर में गुण है। वो क्या करता है, तेरे पीठ के ऊपर जितना महिला कपड़ा को ढोक ले जाता है और उसको पीठ में दाल चावल सब चीज सब ढोक करके लेता है, लेकिन खाने के लिए इसको कुछ कुछ नहीं मिलता, उसको भूसा खाना पड़ता है। हाँ, और उसी तरह श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा सही गाधा वे संसार बोझा वही नो अनेकता, कर हम एक संसार में गधा बन करके सारे संसार का बोझ तो हम भोग रो रहे हैं, गधे पर माता की कई परिश्रम कार वाली है तो कई ना कुछ लग रहा। भक्तिना ठाकुर कहते हैं गधा जैसे दिन भर परिश्रम करता है, हम भी उसी तरह संसार में गधा जैसे दिन भर परिश्रम करते हैं जिसका फल हमें नहीं मिलता, कभी गधा कभी बरसात का समय में पतला हो जाता है और गर्मी में ही मोटा हो जाता है, मतलब क्यों, कभी बरसात का समय में हर जगह हरा भरा घास से रहता और थोड़ी समय घास खाते पेट भर जाता है, वो पीछे मोड़ करके देखता है कितने दूर से मैंने घास खाया, अरे यहाँ से इतना दूर आपका पेट भर गया सर मेरा कुछ नहीं हुआ, इसलिए बन जाते पतला। और वो गर्मी का समय पर मील दूर तक चलते चलते जाता है घास है नहीं, पीछे मोड़ करके देखता है अरे बाबा वहां से यहाँ तक हमने घास खाया, वो अपने आप मोटा हो जाता है क्योंकि गधा करके घूमे। उसी तरह हम भी संसार का हाँ संसार का विषय पर कुछ करके अपना जीवन को धन्य मानते हैं, इसलिए उन्हें गधा कर दिया है। और एक उन्होंने दिवित बंदर को बल दिया है द्वारका लीला में, कहते दिवित बंदर को बल दिया, कहते कृष्ण लीला में ये दिवित बंदर रामचंद्र की बड़ी सेवा की है, लेकिन रामचंद्र को तो भगवान मानते थे लेकिन लक्ष्मण को इसका धर्म क्या है कुछ नहीं, इसलिए लक्ष्मण का प्रति उनको अनादर का भाव था। फिर वही रामलीला के बाद में जब कृष्ण राम ही कृष्ण फिर लक्ष्मण से बलदेव प्रभु के रूप में आए, जिस समय से बलदेव प्रभु अपना रमणी को लेकर विहार कर रहे थे उसी समय ये विविध बांधर दुष्टों का संगति में इसका धीरे 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 बदमाश बन गया और उन्होंने बलदेव प्रभु का जो पत्नियों को तरह तरह उन्होंने छेड़खानी की उसी समय बलदेव प्रभु उसको उन्होंने वध किया है। क्यों वध किया, कारण क्या है, उन्होंने राम की इतना सेवा की, जब राम की सेवा की तब उन्होंने उनको वध करने का क्या जरूरत था, कहते इसका नाम ही द्विबीज है, द्वि मतलब दो और बीज मतलब होता है जानना, इसका मतलब है जो लोग भगवान से गुरुपाद वचन को भिन्न मानते हैं यही द्विबीज है। ठाकुर जी को तो बड़े प्रेम भक्ति करते हैं लेकिन गुरु जी का प्रति वैष्णव का प्रति कोई श्रद्धा भावना नहीं, यही सब द्विविध बंधन है। इसलिए साक्षात हरि प्रेर समस्त शास्त्र जिसको साक्षात हरि रूप में बताया कृष्ण जिसको आचार्य मान भेजा गया अजस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु ये होनी चाहिए, इसलिए श्री बलदेव प्रभु को वध करके सिखा दिया और खबरदार कभी गुरुपाद पत्रों को भगवान से भिन्न नहीं मानना, उनका ही भगवान ही कृपा करने के लिए ये अभिन्न रूप में ये गुरुपाद पत्र रूप में ये आए हैं। कभी बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा करते हुए संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि कभी कभी ये कभी कभी मैंने राम लीला में तृतीय जिसमें लक्ष्मण रूप में आए, लेकिन लक्ष्मण रूप में आ गए कभी कभी ऐसे काम उनको कुछ करना पड़ा जो कि सेवक का धर्म का विपरीत था। जिस सीता के लिए सीता सजाना, जिस सीता को सारा जीवन के लिए राम से अलग कर दिया, ये लक्ष्मण काम किया है। इच्छा नहीं रहने पर भी उन्होंने रामचंद्र बड़े भाई मर्यादा पुरुष होता इसलिए मर्यादा को रक्षा करने के लिए किया। तभी से लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर लिया, लखमरदास तभी मैं और छोटा भैया बनकर लिया। ये बड़ा हम समस्या पड़ जाता हूँ। इसलिए जब फिर कृष्ण लीला में आए बलदेव बन गए, फिर जब महाप्रभु लीला में आए फिर नित्यानंद बड़े बन गए। अभी प्रश्न होता है ये कौन सा धर्म है जो छोटे भाई बन करके आए सेवा करना पड़े बड़े भाई बन गए, ये क्या जरूरत है? ये लगता है कि अपर सी लगतियां कर नहीं, ये तत्वतः सेवा की भावना के लिए उनको सेवा ज्यादा से ज्यादा पड़े। हम इसी भाव से आए और किसी दूसरे भाव से नहीं आए, इसलिए श्री बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा में दस शरीर से और पंच रस से उन्होंने सेवा किया है। कृष्ण का आसन व्यंजन छत्र आवास ये सब के सब बलदेव प्रभु और जितने सारे पंच रस में सारे रस में सेवा करके भी तृप्ति नहीं हुए, फिर उस मधुर रस में आनंद रूप में लेकिन यही बलदेव प्रभु जी श्री गुरुपाद तत्व रूप में हमारे सामने
तुमने ही सब कुछ बोल दिया तो दूसरा क्या
होता?
कुछ बाकी ही नहीं रहा।
श्याम रानी,
श्याम रानी, महारानी,
ओम ज्ञान चिरंतस्य ज्ञानञ्जन सुलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। First of all, I offer my unlimited obeisances and the dust of the lotus feet of my most worshipful Diksha Gurudev, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupai, the Stavakarist of the Sri Srimad Shivabhakti Vedanta Swami Prabhupada, and the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Shiksha Gurudev, Om Vishnupai, the Stavakarist of the Sri Srimad Shivabhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, to all of our disciplic succession and all the assembled devotees. Srila Gurudev has ordered me to speak something of the glory of Sri Baladev Prabhu in brief. Baladev himself is Anantashesh, who has unlimited hoods, who if he were for billions and billions of years with unlimited mouths were to glorify Baladev, he could not come to the end of one day of Baladev's glories. By the mercy of Sri Guru, I'll try to speak a few words. So Baladev, as mentioned earlier, is non-different from Krishna. Just as Radha and Krishna are one, and they assume two forms to enjoy pastimes, as Nittai and Chaitanya are one and have two forms to enjoy pastimes, so Baladev is non-different from Krishna. It's explained in the Chaitanya Charitamrita by Sri Krishnadas Kaviraj Goswami that Krishna's original form is called Swayam Rupa, and then he has so many expansions like Swayam Prakash, Prabhav Prakash. Those forms which, although in the millions and unlimited forms, are not different in the exact form of Krishna. For example, when Krishna was in Dwarka, Narada Muni saw him in so many different activities with his queens, in different activities, but always the same form. In his Vaibhav Prakash, he manifests as Baladev, that is, non-different, but with a slight difference in complexion, that is, as Ratananda Prabhu mentioned, Krishna is black and Baladev is white, and also a difference in mood. Just as when Krishna was in Dwarka, his mood was as a Kshatriya. So Krishna had the mood, that is, Prajanya Nandan Shyam Sundar. He had the mood of Savya Bhagavan, Vishai Vigraha, the supreme enjoyer and the supreme served. Baladev Prabhu is also Sri Krishna, but as Sevaka Bhagavan, as the supreme personality of servant to Godhead. He has the mood of serving Krishna and such a great unending, unlimited desire to serve Krishna in all ways that he serves in all five rasas. Just as you heard yesterday, there are five main or mukhya rasas, that is, Shanta, Dasya, Vatsalya, Sakya, and Madhurya. So, and seven secondary rasas. So there's also a rasa called Samkut Rasa, that is a combination of rasas. So Sri Baladev has a combination of rasas for serving Krishna due to his great unlimited desire to serve. That is, he serves in Dasya Ras. As the older brother, he's able to make Krishna happy in so many ways, as just mentioned by Sri Padrasananda Prabhu. And he's able to protect Krishna, maintain Krishna. And he's also in Vatsalya Bhav. Because he's like an older brother, he is an older brother that has something like a parent. So he's a brother, he's a servant, so he's in Sakya Ras, he's in Dasya Ras, he's also in Vatsalya Ras. And in Vatsalya Ras, as you've seen in Venu Geet, because Krishna, Baladev is the older brother, you see in that painting that he's sort of walking out of the picture with the other older cowherd boys. But he's looking back towards Krishna, knowing why he's leaving and going ahead quickly, and the cowherd boys who are the same age as Krishna, they're staying in the back, "Oh Krishna, look at me, look at me." So meanwhile, Krishna's in the middle, and he can share stealthy glances, sidelong glances with Radharani and the gopis. So Baladev has many, many rasas. Also, he serves in Madhurya Ras as Ananda Manjari, and what you may call Shanta Ras, although we know that in Vrindavan there's no Shanta Ras actually, because it's mixed with all the other rasas. Baladev manifests as the land, and in that way he maintains Krishna, enjoying in the kunjas, enjoying in Govardhan, enjoying in so many places. Baladev is Dhameshvara. He manifests as the Dham. So Baladev has the mood of service, and as mentioned earlier, he is a Khanda Guru Tattva. As a Khanda Guru Tattva, and non-different from Krishna, Baladev serves Krishna in performing Rasa Leela with the gopis. And previously, Srila Gurudev explained what is the nature of Baladev's service to Krishna by performing Rasa Leela with the gopis. There are different siddhantas for different kinds of people, Srila Gurudev explained. For example, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explained that there were some gopis during holy lila who were very far away and looking towards Baladev. And Krishna told Baladev that these gopis are attracted to you. So it may be said that these are the gopis Baladev performed what lila with. Also, he explained that it may be said that when Krishna performed his Arasa Lila, some gopis were very young, and it wasn't until Baladev came back to console the gopis, because they were feeling so much unlimited separation from Krishna. So now some of the gopis were of age to perform Ras. But Srila Viswanath Chakrabarti Thakur, Srila Gurudev explains that these explanations by Srila Saraswati Thakur Prabhupada were for common people, Loka Sangraha, and actually who were not, who could not understand the real nature of Baladev performing Rasa Lila. The real thing is that Baladev performed Ras with Krishna's very gopis. Why? Because he's non-different from Krishna, except in mood, because he's Saviya Bhagavan. He's the Supreme Personality of Servant to Godhead. So in order to pacify the gopis, because different classes of Vrijvasis can be pacified by different things, just like the land of Vrindavan, the trees, they have separation, but not so much separation as the coward boys. But the coward boys have so much separation, but not so much separation as in Vatsalya Bhav, who have so much more separation, but not as much as the gopis. So the only thing that could at least temporarily pacify the separation of the gopis is that Krishna sent Baladev to Vrindavan. Baladev begged Krishna so many times that you go, and Krishna said, yes, I'm coming. But in Baladev's own word, Krishna was so cruel that he wouldn't come, so I had to come. So Baladev came to Vrindavan, and he danced with those very gopis of Krishna. There was no lust there, Gurudev explained, because it is singing, dancing, just like we do kirtan, and swing lila, jalkeli lila, playing in the water, nothing lusty there. Even in Swarga, there's no sinful reaction for ladies and men dancing. What to speak of Ayodhya or Dwarka, and what to speak of Vrindavan. So as a servant of Krishna, Krishna came as his servant, Baladev, in order to pacify the gopis. So their separation was pacified for some time, a moment, and then their separation became more and more. Because we know, Srila Gurudev quoted the words of Srila Saraswati Thakur Prabhupada, that there are two things, meeting and separation, and they continue to increase unlimitedly and forever. So the gopis were pacified momentarily, but then their separation increased more and more unlimitedly. So Baladev, seeing their separation was so great, he himself entered such a great mood of separation that he became black in color, just like Krishna becomes golden because he's so much immersed in separation from Radharani. So Baladev became black, being immersed in separation from Krishna. And then he prayed to Krishna, please come to Vrindavan, and Krishna came and personally pacified all the gopis. Because Balaram is Guru Tattva, so when our eagerness is so great to serve and we pray to Gurudev and pray to the Vaishnavas in all of the songs in our songbook, and we engage in Guru Seva unconditionally, ready to jump in the fire and put our life on our head or life in our hands, ready to give up our life for Guru, when he sees our eagerness, then he personally prays to Radha and Krishna to come in our heart and give us prema bhakti and braja bhakti and gopi prema.
That's great, Guru.
কাশি হচ্ছে আপনি বলে দিন কি অসুবিধা,
আপনি বসুন না যেতে হবে তো।
ब्रह्मचारी जी सब कुछ बोल दिया जो बोलना चाहता था, कुछ बाकी नहीं, और बाकी जो कुछ थोड़ा सा भी था तो श्याम रानी ने उसको पूरा कर दिया, इसलिए मेरे पास बोलने के लिए तो कुछ अधिक नहीं है। तब आप समझिए कि जिस प्रकार से कृष्ण देवकी के गर्भ में आए और वहां पर नारायण स्वरूप में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वसुदेव जी उनको लेकर जमुना पार करके गोकुल में गए और कृष्ण ने वहां जो देवकी मैया के गर्भ से परिपूर्ण स्वयं पर ब्रह्म अखिल रसाम सिंधु वो वहां पर प्रकट हुए थे, जिस समय यहाँ हुए वहां भी मथुरा और वहां दोनों, उस समय में कृष्ण जो वहां पर सोए हुए थे वो इस कृष्ण को चतुर्भुज वाले को अपने में मिला दिया। आप लोग ये सब जानते हैं। उसी तरह से बलदेव प्रभु भी देवकी के गर्भ में आए और देवकी के गर्भ में आने के बाद में जोग माया ने कृष्ण के आदेश से बलदेव प्रभु जो यहाँ आंशिक रूप में थे उनको ले जाकर के वहां पर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी के गर्भ में पहले से ही बलदेव प्रभु जी थे परिपूर्ण ब्रजवाले और उसमें बलदेव प्रभु में ये बलदेव प्रभु जी मिल गए, उन्होंने इनको अपने अंक में मिला। इस तरह से तब जो बलदेव जी हैं ये बलदेव जी के बहुत से स्वरूप हैं, वृंदावन में कृष्ण के साथ में ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन के रूप में जब आते हैं तो रोहिणी नंदन के रूप में हैं, ये सबके मूल हैं और ये जब जाते हैं कृष्ण और बलदेव जी जबकि मथुरा आते हैं, मथुरा से द्वारका जाते हैं तो देवकी नंदन है, देवकी नंदन ही वहां पर जाते हैं, वहां पर वसुदेव वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनुरुद्ध हैं, वहां पर मूल चतुर्भुज
चतुर्भुज
मूल चतुर्भुज में ये शंकरसन जी हैं, वही बलदेव प्रभु जी अपने आंशिक रूप में वैकुंठ में नारायण के पास में महाशंकरसन बनते हैं और वही महाशंकरसन फिर कर्णाधिशाई और फिर कर्णाधिशाई गर्भोदशाई गर्भोदशाई फिर क्षीरोदशाई प्रत्येक जीवों के हृदय में एक एक और उनका अंतिम अंश
अनंत
शेष अनंत उस शेष का भी अंत नहीं है, अनंत है। आज के दिन जन्म होने के कारण राखी बांधी जाती है, राखी का ही दूसरा नाम अनंत है। पहले लोग अनंत धारण करते थे, वो सोने का हो चांदी का हो ये सब धारण करते थे, ये अनंत देव उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए शेष वाले जो अनंत हैं वही शेष बनते हैं, उन पर कर्णाब्धिशाही विष्णु गर्भोदशाही इत्यादि बैठते हैं, बलदेव के रूप में उनकी सेवा करते हैं और कृष्ण के लिए या उनके अवतारों के लिए चरण पादुका
छत्र चामर पादुका वस्त्र
पादुका इत्यादि गले का हार और जो कुछ कृष्ण का है ब्रज का जो अस्तित्व है सब सत्ता है, ये बलदेव प्रभु जी हैं। और एक विचारी है कृष्ण सच्चिदानंद है, सत चित आनंद सत संदेवी या बल चित ज्ञान
संवित
और
लादिनी आनंद से। ये पहले सत जो है सत्ता संदिनी उसके अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु हैं, चित के कृष्ण हैं ज्ञानस्थ, और लादिनी श्रीमती राधिका जी है। जब चित सत्ता और आनंद के साथ में संयुक्त होता है, सत्ता माने ये रूप इत्यादि, और उसमें आनंद होता है, तब ये कृष्ण ही सच्चिदानंद कहलाते हैं। इसमें से सत रहता है और चित भी रहता है, किंतु आनंद अर्थात लादनी शक्ति नहीं रहती। उस समय कृष्ण का जो अंश होता है वो विभिन्न अंश कहलाता है, वही जीव तत्व है। इसके संबंध उन्होंने लोगों ने बतलाया। तो ये बलदेव प्रभु जी ब्रज में उनकी रोहिणी नंदन के रूप में सेवा करते हैं, मथुरा द्वारका में बलदेव प्रभु किंतु देवकी नंदन करते हैं, और उस तरह से उनके जितने भी प्रकाश हैं सब किसके लिए, कृष्ण के जितने विभिन्न विभिन्न अवतार हैं उनमें सब सेवा करने के। राम रूप में अभी रसानंद जी ने बतलाया, राम रूप में करते थे। लक्ष्मण जी को उनके विचार कुछ पसंद नहीं आए, बिना कारण ही सीता जी को वनवास दे दिया दो दो बार, और इनके द्वारा ही इनको अंतिम दिया, इनको जाओ वाल्मीकि आश्रम में छोड़ो। राजा मैं छोटा भैया नहीं बनूंगा, बड़ा भैया बनूंगा, इसलिए बड़ा भैया के रूप में आए। और चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी छोटे भैया नहीं बड़े भैया नित्यानंद के रूप में आए। जब जब जरूरत पड़ती थी महाप्रभु जी को, वैसे ही वो कुछ शासन जैसा वो करते थे। महाप्रभु भावाविष्ट होकर के गिर पड़ेंगे तो वो उस समय में रुकना चाहते हैं, किंतु भावाविष्ट होने से उस समय राधिका का भाव है, इसलिए रोक नहीं सकते। बलदेव प्रभु जी अभी बतलाया गुरु तत्व है, पहले तो धन का तुर माने अज्ञान को दूर करके, प्रलंब वो कपटता का मूल है, शिष्य के हृदय में कपटता रहेगी भजन नहीं होगा। कपटता माने क्या, भजन करते हैं कृष्ण का, सोचते हैं कि धन हो जाए, पुत्र हो जाए, परिवार हो जाए, नौकरी लग जाए, लड़की की शादी हो जाए, ये सब कपटता रहेगी भजन में तो कैसे होगा। उसमें बलदेव प्रभु जी कृपा करके कृष्ण ही बलदेव प्रभु के रूप में आकर के रक्षा कर सकते। द्विज बंदर को मारा, लक्ष्मण जी के प्रति अपराध करता था, उसको मारा, और नैमिषारण्य में जब गए तो लोमहर्षण पुराण पाठ कर रहा था। बलदेव जी के आने के साथ साथ में सोना काजी 60,000 ऋषि लोग, जो कि सुत गोस्वामी से भी बहुत ऊंची ऊंची पदवी पर हैं, वो लोग उठ करके खड़े हो गए, बलदेव जी का अभिवादन किया, किंतु वो अभिमान में मत हो करके अपने आसन से नहीं उठा, उनको प्रणाम नहीं किया। बलदेव प्रभु जी ने कहा कि मैं जगत गुरु आया यहाँ, और तुम सब ऋषि लोग तुमसे 1,000 गुना श्रेष्ठ, और ये लोग आकर के हमको प्रणाम किया, अभिवादन किया, खड़े हुए, और तुम अपने आसन से नहीं खड़ा, तुम गुरु होने के योग्य नहीं है, भागवत कथा पढ़ने योग्य नहीं है, और तुम्हारा बदली होना उचित। बस एक कुश लिया या हाथी लिया, ऐसे कर दिया, बस समाप्त हो गया, उसका धड़ से शरीर अलग हो गया। ऋषि लोग हाय हाय करने लगे, बलदेव प्रभु जी आपने बड़ा अनर्थ किया, यद्यपि आप ईश्वर हैं, जगत के प्रभु हैं, तो ही आपने अनुचित कहा। हम लोग इनसे भगवान की कथाएं पुराण सुन रहे थे, आपने इनको मार डाला। ओ मैं इनको जीवित कर देता। नहीं प्रभु, आप जीवित नहीं किए, जो हुआ सो हुआ, अब कोई व्यवस्था हमारे लिए की। तब उन्होंने उसके बेटे को उनको जो अब जिसको अभी सूत गोस्वामी, जो हमारे सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे, उनको उन्होंने हाथ सिर पर हाथ रख करके कहा, जैसे तुम्हारी सब जितनी विद्याएं हैं, पुराण, वेद, उपनिषद, शास्त्र, भागवत, सब तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति हो जा और यहाँ बैठ करके तुम हरी कथा हो। तो इस तरह से बलदेव जी आदर्श गुरु भी हैं। और भी हम बहुत जगह श्रीमद् भागवत में देखते हैं, रुक्मिणी के विवाह के समय में, रुक्मिणी के विवाह के समय में जब कृष्ण ने सब सेनाओं को हरा दिया और रुक्मिणी प्रतिज्ञा किया, मैं इसको हरा करके अपनी बहन का उद्धार करूंगा, नहीं तो मैं लौटूंगा नहीं, मैं नहीं लौटूंगा। उस समय में वो कृष्ण के ऊपर में आक्रमण किया और उस समय कृष्ण ने उसको बांध दिया, और बांध करके जबकि वो मारने जा रहे थे, बलदेव प्रभु जी आ गए,
तुम्हारे साला है,
और तब उन्होंने कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं
साला, तुम्हारा साला है,
छोड़ो छोड़ो। तो कृष्ण ने उसके हजार चोटियां रख दी और उसको निरादर करके छोड़ दिया। उसमें बलदेव प्रभु जी ने रुक्मिणी को अपने भाई की दुर्दशा देख करके, उनको कुछ शोक हुआ था, उसमें बहुत सुंदर तत्व ज्ञान दिया है। देखो, सुख दुख अपने बस की बात नहीं, किंतु अपने कर्मों का फल है। और भक्तों के लिए क्या है, कर्म का फल नहीं है। तत्ते नुकंपां सुसुम क्षमाण, उसको भगवान की कृपा। जो भक्त लोग दुख पर बिल बिला जाते हैं, हा है मैं क्या करूं, उनका भजन संभव नहीं है। उसको अपने कर्मों का फल अवश्य भोक्तव्य है, और या तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा उसे मान लेना चाहिए। हमको दीनहीन करने के लिए, हमारा अभिमान दूर करने के लिए, नम्र होने के लिए, तृणादव्य सुनिच होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मान करके उसको सुख दुख को हंसते हुए झेल लेना चाहिए। और कर ही क्या सकते हैं, रो करके झेलिए या हंस करके। तो इस प्रकार से बलदेव जी ने बहुत कुछ समझाया।
सुभद्रा हरम, सुभद्रा हरम,
हाँ सुभद्रा हरम। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि कृष्ण में और बलदेव जी में कुछ मतभेद है, होना तो नहीं चाहिए। क्या बलदेव जी कृष्ण की इच्छा को नहीं जानते हैं? बलदेव जी कृष्ण से अभिन्न है, अभी सब बतलाया गया, उनका ही द्वितीय देह है, केवल शरीर का अस्त्र का कुछ भेद है, बाकी दोनों एक। तो कृष्ण के साथ में उनका मतभेद क्यों होता था, जिसको कहते हैं नरलीला। नरलीला नहीं मानेंगे तो फिर इसका समाधान नहीं होगा। नरलीला में कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो नरवत हो, भाई भाई है ठीक है, किंतु उनमें भी मतभेद देखा जाता है। बाप और बेटे में भी, मैया और पुत्र में भी मतभेद देखा जाता है। तो उन लोगों में मतभेद क्यों ना रहे, क्योंकि नरलीला है, इसलिए होता था। बलदेव जी चाहते हैं कि हम अपनी बहन की शादी दुर्योधन से देंगे। कृष्ण वसुदेव जी, रोहिणी जी और जितने भी थे, देवकी मैया इत्यादि सबका एक ग्रुप था, ये चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ, किंतु बलदेव जी के सामने किसी की चलती नहीं थी, कृष्ण की भी नहीं चलती थी, वसुदेव जी की भी, देवकी की भी नहीं, सब उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य थे, सब डरते थे। अब कृष्ण ने सोचा जी अब क्या उपाय किया जाए, ये बदमाश भक्ति विरोधी, ईश्वर विरोधी, मेरा विरोधी, और उसको सुभद्रा के साथ में शादी कर देंगे। तो उन्होंने ट्रिक किया, ट्रिक माने
चतुराई की,
कुछ षड्यंत्र रचा। उन्होंने अर्जुन को कहा अर्जुन एक बात करो, तुम सन्यासी का रूप धारण करके द्वारका में आकर के अपना भजन साधन करो, और वहां पर तुम्हारा दर्शन करने के लिए सुभद्रा हमारी बहन आएगी, तो फिर उसको हरण कर ले। अर्जुन ने कहा जी ठीक है। अर्जुन तो उनको देख करके बहुत मुक्त थे, वो चाहते थे कि इससे ही हमारी शादी है, और दुर्योधन आंख लगाए हुए बैठा था जैसे कि शिशुपाल बैठा था सोच रहा था ये कब खड़ी जाए, कब खड़ी जाए, कब खड़ी जाए, अब विवाह हो जाए तो सारा जादू हमारे पक्ष में हो जाएगा, अर्जुन के पक्ष, पांडवों के पक्ष में नहीं रहेगा, राजनीति उसकी थी और इनकी राजनीति नहीं थी। तो अर्जुन ऐसे ही किया, त्रिदंडी सन्यासी बन करके वहां पर एकदम किसी से बातचीत नहीं, कुछ भोजन बहुत थोड़ा, जैसे साधु सन्यासी करते हैं करने लगे। यदि स्वाभाविक रूप रहता है तो एक तरह से ठीक है, बनावटी यदि करेंगे तो उस स्वभाव की से कुछ अधिक हो जाता है। यशोदा मैया कृष्ण को प्यार करती हैं, किंतु उतना आई तो यशोदा मैया से भी अधिक, ये हृदय की मणि इसको बाहर में क्यों, इसको भीतर में रखें, इस तरह अधिक। तो यदि यहाँ पर समझ लेना जिसे इसमें कुछ कपटता है, तो फिर अर्जुन ने बनावटी रूप में कुछ ऐसे भाव प्रभाव किया कि सारे द्वारकावासी लोग सभी मुक्त हो गए, बलदेव प्रभु जी स्वयं गए, उनको प्रणाम किया और अर्जुन ने आशीर्वाद दे और अपनी बहन को कहा जिसे जाओ अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, वो एक सन्यासी आया है, उसको उसका आशीर्वाद ले आओ। वो सोलह श्रृंगार करके वहां पर गई, और अर्जुन तो पहले से ही वहां पर प्रस्तुत थे, वो रथ में चढ़ करके गई दर्शन करने के लिए, और अर्जुन तो पहले से ही तैयार थे, बस उसी रथ पर सुभद्रा जी को चढ़ाया और अपने चढ़ गए और सुभद्रा जी को दे दिया घोड़े की
लगाम।
सुभद्रा जी रथ को चलाने लगी और अर्जुन अस्त्र लेकर के खड़े हो गए, जो आए उनको मार गिराया, सबको भगा दिया। बलदेव जी सुने जैसे ओ हमारी का बहन का अपहरण कर रहा है, दौड़े वहां से और राज्य से सब सारी सेनाओं चलो अर्जुन को एकदम मार करके खत्म कर देंगे। जब वो चलने लगे तो कृष्ण ने कहा भैया कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, अरे तुम देखने ही गए, हमारी बहन का अपहरण कर लिया, तुम चुपचाप बैठे हो। अरे भैया अपहरण कर लिया तो ये तो तुम्हारे वंश की परंपरा है, हमने रुक्मिणी का अपहरण नहीं कर लिया,
कब तो हमने मदद किया था,
सामने दुर्योधन की बेटी का अपहरण नहीं कर लिया
लक्ष्मण,
तो ये क्या कर चुका, जो भी होता है ऐसा ही करते हैं,
और हरण तो सुभद्रा ने किया, तो कौन चला रहा है,
सुभद्रा
ने तुम्हारी भी इसमें राय है शायद,
और हरण किसने किया, सुभद्रा गर्भवती है, हरण किसने किया,
हरण अर्जुन कहाँ कर रहा, सुभद्रा को रथ चला रही है,
उसे हरण करने ले जा रही है।
बलदेव जी यदि आप अर्जुन को मार डालेंगे, मार सकते हैं, मार डालेंगे, किंतु आपकी बहन विधवा हो जाएगी, देखते हैं युक्ति देने के साथ, तो पहले हमको क्यों नहीं बदलाया कि हम लोग सभी जितने घर के हैं चाहते हैं जो अर्जुन के साथ ही, तो मैं जरूर मैं भी राजी हो जाता। तो इस तरह से मतभेद देखा जाता है, मतभेद होना ही चाहिए नकलीला। इसलिए यहाँ पर भी मतभेद देखा जाता है और भी
दुर्योधन
का ही देखा जाता है, किंतु उसको भेद नहीं।
दुर्योधन में बलदेव प्रभु भी
भीम और दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में अंतिम समय में गदा से दूसरों से युद्ध कर रहे हैं। भीम बलवान है और ये बलदेव प्रभु जी से गदा युद्ध का कौशल जानता है अधिक, इसलिए बड़ी फुर्ती के साथ में उनको रोकता है। युद्ध होने लगा उसी समय बलदेव प्रभु जी आए। बलदेव जी के सामने ही भीम ने कृष्ण के इशारे से ऐसे ताल ठोका, यहाँ पर जंघे पर मार, जंघे पर, जंघे पर मारना, कमर से नीचे मारना गदा युद्ध के विरोध है। किंतु कृष्ण का आदेश पाते ही, इशारा पाते ही भीम ने मारा गदा यहाँ और वो चूर्ण होकर के गिरा। बलदेव प्रभु जी गदा हाथ में लेकर के, अरे ये अन्याय कर रहा है, गदा युद्ध में ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे और मार डाला उसको,
भीम को मैं मार दूँ।
जब चले अपना गदा लेकर के भीम को मारने के लिए, तो कृष्ण कहा कि भैया आज तो तुम बड़े धर्म युद्ध देख रहे हो, जब अभिमन्यु को सब लोगों ने मिल करके मारा, इतने बड़े महारथी, उस समय आप कहाँ थे?
साथ साथ महारथी,
जिस समय की रक्षा भवन में पांडवों को विदा करने, उनको जला देने के लिए सब कर रहे थे, उस समय आप कहाँ थे?
द्रौपदी का वस्त्र हरण,
द्रौपदी का चीर हरण हो रहा थे, आप आंख बंद करते थे ना, कहाँ थे?
भीम को विष खिला कर नदी में बहा दिया।
हाँ, भीम को विष का लड्डू खिला करके नदी में और नदी में फेंक दिया। उस समय आप कहाँ थे? इतने पांडवों पर अत्याचार हुए, उनको बर्बाद कर दिया, उस समय आप कहाँ थे? तब उनका सिर ऊंचा हो गया और बोलते प्रभु युवा से सरक गए। ओ, ये कृष्ण की ही संभाया है, कृष्ण ही चाहते हैं। इसी तरह से बलदेव प्रभु जी की कथा अनंत है, लीला अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी कृष्ण सेवा अनंत है, उनका नाम भी अनंत है, गौत्रमा अनंत।
तुम्हें एक दिन करो ना, तुम्हें करो,
तुम्हें
कीर्तन करो।